Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavad Bhaktajan Krishna Yajurveda ke श्वेताश्वतर उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र द्रष्टा ऋषि इस जगत के रहस्यों को इस मानव जीवन के परम कल्याण के उपायों को ढूंढने के लिए भक्तिपूर्ण साधना ध्यान में निमग्न हुए और उस ध्यान में निमग्न होकर के निमज्जित होकर के ध्याननिष्ठ चेतना से उन्होंने क्या प्राप्त किया उसी का व्याख्यान इस श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय मंत्र के द्वारा हम लोग जान रहे हैं। भगवद् भक्तजन ध्यान के लिए भी योग के लिए भी एक भक्ति की आवश्यकता है। ध्यान मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बड़ा सूखा रूखा हृदय में कोई भाव कोई भावना न हो, ऐसा नहीं। जब सत्य को अन्वेषण के लिए साधक अपने जीवन को विसर्जित कर देते हैं उस अतीन्द्रिय अस्तित्व के हाथों पर, सहज रूप से उनके जीवन में एक पवित्रता एक निर्भरता एक आत्मीयता स्वतः पनपते हैं और उस अतीन्द्रिय शक्ति के ऊपर चरणों में वो अपने जीवन को समर्पित करके उस तत्व के अन्वेषण में लग जाते हैं। इसलिए ध्यान शब्द का अर्थ केवल मात्र बौद्धिक विचार शक्ति नहीं, एक निवेदन पूर्वक प्रार्थना उस शक्ति को जानने की एक चेष्टा। सर्वप्रथम तृतीय मंत्र का उच्चारण करते हैं। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् य कारणानि निखिलानि तानि य कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठत्येक कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढाम् य कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एक ते ऋषि उन ऋषियों ने ध्यान योगानुगता अपश्यन् चित्त की एकाग्रता एकाग्रता रूप ध्यान योग के द्वारा चित्त की एकाग्रता अर्थात अंतर्मुखता चित्तैकाग्रम ध्यानम वर्तमान में जो हम लोग की जो दशा है वो एकाग्रता में है अंतर्मुख में है कि किस मुख में है बहिर्मुखता एकाग्रता तो दूर है अनेकाग्रता है कभी कभी लगता है कि अनेकाग्र होना तो अच्छा है एक में स्पेशलाइज और कईयों में इसमें भाई मैं डबल एमए हूं ट्रिपल हो तो उसमें ज्यादा हम लोग उसको गुरुत्व मानते हैं कि भाई ये बड़ा श्रेष्ठ है परंतु तो आध्यात्म क्षेत्र में अनेकाग्र होने से काम नहीं चलने वाला है एकाग्र होना पड़ेगा और वही बता रहे ध्यान योग शब्द का अर्थ भी भाष्यकार लिखते हैं चित्तैकाग्रम चित्त की एकाग्रता के द्वारा उनके जो बाह्य मुखता है बहिर्मुखता है वो जो है अंतर्मुख हो करके और जब तक अंतर्मुख नहीं हो सकते तब तक वो देवात्म शक्ति को अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि उस शक्ति में ही वो एक छिपी हुई आवृत आच्छादित वो शक्ति है जो अंतर्मुख हुए बिना उपलब्ध नहीं कर सकते इसीलिए ऋषि कहते हैं स्वगुणैर निगुढाम देवात्म शक्ति अपने गुणों से अपने विशेषणों से जो आवृत जो शक्ति है देवात्म शक्ति को उन्होंने अपश्यन् आपश्यन शब्द का अर्थ देखा ऐसे दृश्य वस्तु की तरह देखा ऐसा नहीं समझना चाहिए वो अनुभव किया समझा रियलाइज किया ये शक्ति है यह कारणानी पहले तो वो शक्ति को अनुभव किया समझा और फिर उस शक्ति के ही विकार प्रकार गच्छति है अधितिष्ठति वो अनुभव किया यह एक कालात्मयुक्तानी वही जो परमात्मा की शक्ति है महाराज अथवा परमात्मा शब्द से भी कह सकते हैं क्योंकि शक्ति शक्ति मतोर अनन्यत्वात ऐसा वेद व्यास जी ने सूत्र प्रतिपादन किया तो वो जो एक होते हुए भी काल से लेकर पुरुष आत्मा जीव तक निखिलानि तानि कारणानि अधितिष्ठति सभी कारणों को अपने में अधितिष्ठति आधार रूप में अधिष्ठान रूप में वो सबको रखती है अथवा सबके नियमन करने वाली वो शक्ति है प्रेरणा देने वाली प्रेरिता के रूप में वही शक्ति विद्यमान है एक उस ध्यान योग के द्वारा ऋषियों ने उस शक्ति को अनुभव किया अब जो है इतना तक हम लोगों ने किया कि ध्यानम नाम चित्तैकाग्रम तदेव योग युज्यते अनेन इति ध्यातव्य स्वीकारो उपायः भाई जिसके द्वारा चित्त को युक्त किया जाता है। ये ऐसा भी व्युत्पत्ति कर सकते हैं, अर्थात ध्येय, ये जो शब्द लिखा ना, ध्यातव्य स्वीकारोपाय, ध्यातव्य वस्तु को स्वीकार करने की योग्यता। तो इससे कितना स्पष्ट करते हैं कि किसी भी वस्तु को आप ध्यान करें तो आप उसी को देखते हैं क्या ना, जो आपके मन में है उसको संमिश्रित करके आप देखते हैं। ऑब्जर्वर हमेशा अपने मन के बातों को उस दृश्य, उस विषय में प्रोजेक्ट करके ही वो अनुभव करता है। ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों को पता ही नहीं लगता कि हम अपने मन के जो भाव है उसको भी हमने थ्रो करके ही उस विषय को समझा। जो जिस भाव से, जो जिस गुण में अधिष्ठित है, जिस गुण से वो संचालित है, उस गुणों से युक्त होकर के ही उस विषय को वो देखता है, अनुभव करता। एक पेड़ के नीचे कई साल से एक दुकानदार जो है पान की दुकान लगा के बैठते हैं, रोज आकर के दुकान खुलता है, पान बेचता है, फिर बंद करके जाता है, परंतु उस पेड़ से उसका कोई मतलब नहीं। परंतु उसी पेड़ के नीचे से जब कोई और गुजरता है, अगर वो दार्शनिक हो, कोई कवि हो मानो, तो उस पेड़ को देख करके, पेड़ में लगी हुई फूलों को देख करके उनके कवित्व शक्ति का वो अलग ही कुछ और सोचते हैं। कोई गर्मी से उस पेड़ के नीचे स्थान लेते हैं तो पेड़ को लेकर के उनके दिल में कुछ और ही बात सूझती है। तो उसी प्रकार व्यक्ति जब अपने सारे भावों को समेट करके अथवा अलग करके उस वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु की जो सही अर्थ है, विषय है, उसकी जो यथार्थता है उसको वो समझ पाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, कभी भी कोई भी वस्तु हो चाहे घटना हो, हम लोग सब हमेशा अपनी तरह से इसको एक एक आलोक से देखते हैं। तो यहां जो विशेष बात है, ध्यातव्य स्वीकारोपाय, भाई ध्यान, ध्येय वस्तु के ग्रहण करने का जो उपाय है वही है योग, अर्थात बुद्धि की शुद्धि अथवा व्यक्तित्व में जो रज तम और सत्व, ये हमेशा अप डाउन कर रहे हैं, जिनके चित्त जितना स्वच्छ है, सात्विक में प्रतिष्ठित है, वो उस वस्तु को एज इट इज यथार्थ रूप से जान सकते हैं। नहीं तो अगर रज है तो रज रूप से आप उसको देखिए ना, किसी से आप मिलने जाते हैं, अगर दफ्तर में गए, किसी कारणवश वो ऑफिसर पहले बिगड़ा हुआ था और आप गए और आपके सामने जो वो नाराज हो गया, तो आप जो उसके बारे में आइडिया लेकर के वापस आते हैं क्या कि बड़ा क्रोधित है, बड़ा ये है, वो असल में क्रोधित है क्या? और अन्य दिन कोई और पहुंचा तो महाराज अलग व्यवहार मिला। तो मैं जब गया, मेरे साथ जो बिहेव हुआ, तो उससे हमने एक निश्चय किया, ये व्यक्ति क्रोधी है। और आप जब गए, वो उस पोजीशन में, उस स्थिति में, उस सिचुएशन में नहीं था, वो अलग में थे, तो आपसे अच्छा व्यवहार किया, तो आपका जो कॉन्सेप्ट बना वो बहुत अच्छा है। तो कौन सही है, मैंने जो देखा, मैंने जो अनुभव किया वो सही है कि आपने जो अनुभव किया? तो दोनों अनुभव में अलग अलग है, दोनों अनुभव से वो व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का दर्शन अलग होता है। तो इसीलिए सत्व में जब तक साधक प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, आप कितना भी साधना करें, अगर रज है, अगर तम है, तो रज तम का प्रभाव जो है आपके विषय, ध्येय विषय में वो अनुगत हो ही जाता है। इसीलिए यहां ये शब्द थोड़ा विचारणीय है, चिंतनीय है कि भाई चित्त को युक्त किया जाता है तो कैसे, किसमें युक्त किया जाता है। ध्यातव्य स्वीकार उपाय, ध्येय वस्तु को हां ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है, युक्त है, अर्थात ध्येय वस्तु की जो सत्यता है, उस सत्यता को जानने के लिए जो चेष्टा है, और वो भी बिल्कुल किसी भी गुणों से उपेत नहीं, अनपेत सत्व में प्रतिष्ठित होकर के उस ध्येय वस्तु को स्वीकार करने का जो उपाय है वही है योग। तम अनुगता समाहिता, ऐसा जो ग्रहण करने का जो अनुगत उपाय है, तल्लीनता है, तन्मयता है, अर्थात इतना निष्ठ हो जाता है, दृढ़ हो जाता है कि उस समय ध्येय से अतिरिक्त उनके पास और कुछ होता ही नहीं। प्राथमिक अवस्था में तो ध्यान ध्येय ध्याता अलग होगा ही, परंतु धीरे 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 ऐसा दृढ़ हो जाता है कि उनमें वो विभाग वो विभक्तता समाप्त हो करके एक निष्ठता। तम अनुगता समाहिता अपश्यन, मूल में है अपश्यन, उसका अर्थभाष्यकार करते हैं दृष्टवंत। क्या दृष्टवंत, साक्षात्कार क्या किया, देवात्म शक्तिम इति, वो देवात्म शक्ति को उन्होंने दर्शन किया, अनुभव किया। अब भाष्य को पढ़िए। पूर्वोक्तमेव प्रश्न समुदाय परिहाराणाम सूत्रम उत्तरत्र प्रत्येकं प्रपंचयिष्यते। पूर्व में जितने भी प्रश्न समुदाय को दिखाया गया अथवा उठाया गया, उस प्रत्येक प्रश्न समुदाय को, प्रश्नों को परिहाराणाम, इस उत्तर समाधान देगा, पहले भी करके आया है, प्रत्येकम प्रपंचयिष्यते उत्तरत्र, अब फिर प्रत्येक को उसी को जो है विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। जो पहले प्रश्न उठाया गया था उसका समाधान सामान्य रूप से दे आए, उसी की व्याख्यान अब किया जा रहा है। मूल प्रश्न तो यही है किम तद ब्रह्म, अथवा यहां क्या है मूल प्रश्न, हाँ किम कारणम ब्रह्म, ये सब अष्टम अध्याय का है ना, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, हाँ और यहां भी वही शब्द का अनुरणन है। तत्र अयम प्रश्न संग्रह किं ब्रह्म कारणम् अहोस्वित् कालादि तथा किं कारणम् ब्रह्म अहोस्वित् कार्यकारण विलक्षणम् अथवा कारणम् वा अकारणम् वा कारणत्वे अपि किम् उपादानम् उत निमित्तम् अथवा उभयकारणम् ब्रह्म किम् लक्षणम् अकारणम् वा ब्रह्म किम् लक्षणम् इति। एक साथ सारा ब्रह्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया। अब तक जो भी आप लोगों ने विचार किया उसको संग्रह रूप से रखा। किम का किम ब्रह्म कारणम, क्या ब्रह्म ही इस संपूर्ण प्रपंच के कारण है? अहस्वित कालादि अथवा काल, तथा किम कारणम ब्रह्म अहस्वित कार्य कारण विलक्षणम, अथवा ये भी बोल सकते हैं कि ब्रह्म कारण है अथवा कार्य कारण अतीत कोई और है। ब्रह्म का क्या लक्षण है उस पर ही प्रश्न कर रहे हैं, अथवा कारणम वा अकारणम वा, ब्रह्म कारण है अथवा नहीं। नाना प्रकार के उहापोह के द्वारा प्रश्न कि भाई ब्रह्म सचमुच कारण है अथवा अकारण है। अगर कारण है तो किम उपादानम निमित्तम वा उत, भाई अगर कारण आप कह रहे हैं तो वो निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण है, अथवा निमित्त कभी कभी उपादान कारण भी है और कभी कभी निमित्त कारण भी माना जाए। अथ उभयो कारणम ब्रह्म किम लक्षणम,